अध्याय संख्या 18 अनुवाद शिक्षण शीर्षक अनुवाद की उपयोगिता। अनुवाद की चर्चा हम पीछे कर आए हैं, किंतु वहाँ पर विशेष बल संस्कृत का हिंदी अथवा अन्य भाषाओं में अनुवाद पर था। यहाँ हम अनुवाद पर विचार इस दृष्टि से कर रहे हैं कि मातृभाषा के अनुच्छेदों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करना आवश्यक है। प्रारंभिक स्तर पर छात्रों से हम यह आशा नहीं कर पाते कि वे अनुच्छेदों का संस्कृत में अनुवाद कर सकेंगे। मध्य स्तर पर भी यह कार्य कुछ जटिल प्रतीत होता है, इसीलिए विद्यालयों में संस्कृताध्यापक प्रायः अनुवाद को एक बला समझते हैं और उससे बचना ही चाहते हैं, किंतु अनुवाद की उपयोगिता से आँख नहीं मूंदी जा सकती। अनुवाद के महत्व पर एक अध्याय में पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है, अतः संस्कृत के छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे मातृभाषा के उद्भुत भावों को आवश्यकता पड़ने पर संस्कृत के माध्यम से व्यक्त कर सकें, इस दृष्टि से अनुवाद का शिक्षण आवश्यक है। अनुवाद शिक्षण के उद्देश्य अन्य भाषाओं के अनुच्छेदों का संस्कृत में अनुवाद करने से कुछ स्पष्ट उद्देश्य है, जिन्हें हम निम्नलिखित ढंग से लिख सकते हैं। प्रथम, छात्रों को संस्कृत के माध्यम से विचारों को आदान प्रदान करने की योग्यता प्रदान करना। द्वितीय, विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न इकाइयों के साहित्यों का तुलनात्मक ज्ञान प्रदान करना। तृतीय, छात्रों को मातृभाषा अथवा अन्य भाषा में अभिव्यक्त भाव व शैली को समझना एवं उनकी रक्षा करना। चतुर्थ, दूसरों के विचारों को उनकी भाषा एवं शैली के अनुसार संस्कृत भाषा लिखने का अभ्यास करना। पंचम, अन्य आधुनिक भाषाओं में अभिव्यक्त विचारों को संस्कृत भाषा में अभिव्यक्त करके संस्कृत साहित्य को आधुनिक विचारों से अभिवृद्ध करना। अनुवाद के रूप, साधारणतः अनुवाद के निम्नलिखित रूप दिखाई पड़ते हैं। प्रथम, अक्षरशः अनुवाद। द्वितीय, छाया अनुवाद। तृतीय, तथ्यानुवाद। प्रथम, अक्षरशः अनुवाद। इनमें एक भाषा के शब्दों के स्थान पर संस्कृत भाषा के समानार्थक शब्दों का प्रयोग होता है, अतः इसे शब्दशः अनुवाद भी कहा जाता है। भाषा की इकाई अक्षर या शब्द ना होकर वाक्य होते हैं, किंतु अक्षरशः अनुवाद में अक्षरों एवं शब्दों को ही अत्यधिक महत्व दे दिया जाता है, इससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उदाहरणार्थ, मेरा बदन प्रचलित हिंदी में मेरा शरीर का द्योतक है, किंतु यदि इसका अनुवाद संस्कृत में मम वदनम कर दिया जाए तो भिन्नार्थक हो जाएगा। सैंधव मान्यव का अनुवाद यदि नमक लाओ कर दिया जाए और आवश्यकता घोड़े की हो तो अनर्थ हो जाएगा। अक्षरशः अनुवाद मक्षिका स्थाने मक्षिका के तुल्य होता है, यह सर्वथा त्याज्य है। द्वितीय, छाया अनुवाद, यह अनुवाद की दूसरी शैली है, इसे मर्मानुवाद भी कहा जाता है। इसमें एक भाषा के अनुच्छेद के सारांश को समझकर दूसरी भाषा में अनुदित कर दिया जाता है। इसमें भावाभिव्यक्ति की क्षमता पर बल तो दिया जाता है, किंतु मूल भाषा का केवल सार ले लिया जाता है। इस प्रकार यह केवल निष्कर्ष रह जाता है और भाषा एवं शैली उपेक्षित रह जाती है। तृतीय, तथ्यानुवाद, अनुवाद की तीसरी शैली तथ्यानुवाद है। इसमें केवल शब्दों के स्थान पर शब्द नहीं दिए जाते और ना ही केवल सारांश तक ही सीमित रहा जाता है, वरन मातृभाषा या अन्य भाषा में व्यक्त भाव और आत्मा को संस्कृत में प्रतिबिंबित करने का प्रयत्न किया जाता है। इसमें मूल भाषा के भाव तथा शैली दोनों का निर्वाह किया जाता है। यदि हिंदी के किसी अनुच्छेद का संस्कृत में अनुवाद किया जाता है तो वह इस प्रकार किया जाए मानो हिंदी का मूल लेखक स्वयं ही संस्कृत में लिख रहा हो। अनुवाद की तीसरी शैली सर्वोत्तम शैली है। अनुवाद शिक्षण की विधियाँ, अनुवाद शिक्षण की सामान्यतः तीन विधियाँ प्रचलित हैं। प्रथम, पुस्तक विधि। द्वितीय, दुभाषिया विधि। तृतीय, तुलना एवं अनुकरण विधि। प्रथम, पुस्तक विधि। इस विधि में पुस्तकों द्वारा अनुवाद की शिक्षा दी जाती है। अनुवाद शिक्षण पर की विशेष पुस्तकें तैयार की जाती हैं जिनमें व्याकरण क्रम से मातृभाषा में वाक्य लिखे जाते हैं। एक एक प्रकार के वाक्यों को ले लिया जाता है और उन्हें संस्कृत में अनुवादित कर दिया जाता है। पहले सरल वाक्य रहते हैं, तत्पश्चात मिश्रित एवं संयुक्त वाक्य। द्वितीय, दुभाषिया विधि। यह विधि सामान्यतः औपचारिक आयोजनों एवं बड़े बड़े सम्मेलनों में काम आती है। इसमें एक व्यक्ति अपनी मातृभाषा में बोलता है और दूसरा व्यक्ति उनके भावों को संस्कृत में व्यक्त करता चलता है। संस्कृत विश्व परिषद के अधिवेशनों में जब राष्ट्रपति या अन्य व्यक्ति हिंदी में बोलते हैं तो उनके भाषण को यदि उसी समय संस्कृत में अनुवाद किया जाता है, एक वाक्य बोलने के पश्चात ही वाक्य को संस्कृत में अनुवादित कर दिया जाता है और इस प्रकार संपूर्ण भाषण का अनुवाद हो जाता है। कक्षा में भी इस पद्धति को कुछ ना कुछ प्रयोग में ला सकते हैं। किसी अनुच्छेद को लेकर उसे एक छात्र से पढ़वाया जाए, एक एक वाक्य को अध्यापक सुंदर संस्कृत में अनुवाद करता चले। इस विधि से छात्रों को संस्कृत में बोलने की भी प्रेरणा मिलती है और वे संस्कृत के सौष्ठव से परिचित होते रहते हैं। तृतीय, तुलना एवं अनुकरण विधि। इस विधि में सर्वप्रथम आदर्श अनुवाद प्रस्तुत किया जाता है। उस आदर्श अनुवाद को छात्र परखते हैं और उसके पश्चात उनके समक्ष अनुवाद करने के लिए मातृभाषा में अनुच्छेद दे दिया जाता है। यह अनुच्छेद शैली एवं शब्दावली की दृष्टि से आदर्श अनुवाद वाले अनुच्छेद के समान ही रहेगा। इस विधि से छात्र आदर्श अनुवाद का विश्लेषण करके उसकी मातृभाषा से तुलना करके अनुवाद करना सीखते हैं। उपर्युक्त तीनों विधियों का समन्वय होना चाहिए क्योंकि कोई भी विधि स्वयं में पूर्ण नहीं है। कुछ सावधानियां। प्रथम, अनुवाद कार्य छात्र के मानसिक स्तर के अनुसार होने चाहिए। द्वितीय, तुलनात्मक अध्ययन की प्रवृत्ति का विकास करना चाहिए। तृतीय, अनुवाद में कुशलता प्राप्त करने के लिए अभ्यास परमावश्यक है। चतुर्थ, मूल भाषा शैली की रक्षा होनी चाहिए। पंचम, मूल भाषा में प्रयुक्त भावों की भी रक्षा होनी चाहिए। षष्ठ, सरलता और सुबोधता का ज्ञान होना चाहिए। सप्तम, मूल एवं अनुवाद की भाषाओं की प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए। अष्टम, अनुवाद कार्य के लिए संस्कृत के व्याकरण का ज्ञान परमावश्यक है। नवम, निर्धारित व्याकरण के आधार पर हिंदी से संस्कृत तथा संस्कृत से हिंदी में अनुवाद का अभ्यास होना चाहिए। इनमें शब्दों का एक ही स्वरूप आवर्तक हो तो उत्तम होगा, यथा बालकानाम छात्रानाम अथवा वृक्षः पुष्पः मृगः अथवा बालिकायः सुतायः रामायः आदि। अतः व्याकरण पाठ के आधार पर ही अनुवाद पाठ की योजना बनानी चाहिए। दसम, छात्रों के अनुवाद कार्य का संशोधन अवश्य होना चाहिए। अनुवाद करते समय छात्रों को रूप रटने के लिए बारंबार आग्रह नहीं करना चाहिए। रूप का अभ्यास कराकर छात्रों को उससे परिचित कराया जाए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पहले छात्रों के समक्ष स्वरांत अदंत पुल्लिंग शब्द रखे जाएं, उसके बाद अन्य शब्द आएं, बालकः देवः अश्वः गजः सिंहः करः नरः घटः वटः दोषः गुणः जैसे शब्दों का अभ्यास पहले होना चाहिए। वाक्यों के क्रम में भी सरलता का ध्यान रहे। सामान्य कथन या प्रश्नवाचक वाक्य सरल हों और बाद में कठिन आएं। पहले तो छात्रों को अयम कह, अयम गजः, अयम कह, अयम बालकः, अयम कह, अयम विवेकः, अयम कह, अयम रामः जैसे सरल वाक्यों का अभ्यास कराया जाएगा। मोहना गच्छन्ति, रामः पठति, विवेकः लिखति, श्यामः पत्रम लिखति जैसे सरल वाक्य कर्ता क्रिया के अभ्यास के लिए ठीक रहेंगे। अनुवाद में सरल से कठिन की ओर चलना श्रेयस्कर होगा। इस दृष्टि से यहाँ पर कुछ संकेत दिए जा रहे हैं। जहाँ तक वचन का प्रश्न है, पहले एक वचन का अभ्यास कराया जाए, तत्पश्चात बहुवचन का और बाद में द्विवचन का। कारकों का क्रम निम्न प्रकार से रखना ठीक होगा। प्रथमा, द्वितीया, षष्ठी, सप्तमी, तृतीया, पंचमी, चतुर्थी। संस्कृत के शास्त्रीय व्याकरण की दृष्टि से यह क्रम कुछ अटपटा सा लग सकता है, किंतु संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय का अवलोकन करने पर भी यही दिखाई पड़ता है कि प्रथमा, द्वितीया, षष्ठी विभक्तियों का प्रयोग बहुत अधिक हुआ है। सप्तमी व तृतीय का प्रयोग कुछ कम हुआ है। पंचमी का प्रयोग भी कम है, किंतु चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग तो बहुत कम है। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर चतुर्थी का प्रयोग प्रायः नहीं होता, अतः इसे बाद में सिखाने में क्रियात्मक व्याकरण की दृष्टि से कोई हानि नहीं है। हाँ, जब बालक इन्हें सीख ले तो बाद में उसे प्रथम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्तियों का शास्त्रीय क्रम भी बता देना चाहिए, किंतु अभ्यास उन्हीं विभक्तियों का अधिक कराना चाहिए जिनके प्रयोग की अधिक आवश्यकता पड़ेगी। उच्चतर कक्षाओं में कृदंतों के प्रयोग का विशेष अभ्यास कराना चाहिए। दलित संस्कृत में कृदंतों की भूमिका महत्वपूर्ण है। अनुवाद शिक्षण का क्रम, अनुवाद कार्य की पाठ योजना एवं शिक्षण का क्रम निम्नलिखित ढंग से होना चाहिए। प्रथम, सामान्य प्रारंभिक बातें। द्वितीय, सामान्य उद्देश्य। तृतीय, विशिष्ट उद्देश्य। चतुर्थ, सहायक सामग्री। पंचम, पूर्व ज्ञान। षष्ठ, प्रस्तावना। मातृभाषा के अनुच्छेदों को श्याम पट पर लिख दिया जाए। लपेट श्याम पट पर घर से भी लिखकर ले जाया जा सकता है। सप्तम, विषयोपस्थापन। क, अनुच्छेद का मौन वाचन। ख, कठिन शब्दों पर चिन्ह लगाना। ग, अध्यापक द्वारा श्याम पट पर चिन्हित शब्दों के संस्कृत पर्यायवाची शब्द लिखना एवं उनके प्रयोग के निर्देश देना। सुलभ होने पर शब्दकोश का प्रयोग करना। ग, मौखिक कार्य। प्रश्नोत्तर प्रणाली द्वारा अध्यापक प्रस्तुत अनुच्छेद के कुछ वाक्यों का संस्कृत छात्रों द्वारा संस्कृत में अनुवाद कराएगा और आवश्यक निर्देश देगा। वहाँ अनुवाद लेखन। अष्टम, संशोधन। छात्र द्वारा लिखे गए अनुवाद की संशोधन आवश्यक है। संशोधन पर आगे कुछ विचार किया जाएगा। नवम, गृह कार्य। अनुवाद लेखन यदि अपूर्ण रह जाए तो उसे घर से पूरा कर लाने को कहा जाए, अथवा गृह कक्षा कार्य की भांति ही एक अन्य अनुच्छेद को छात्रों को घर से अनुदित कर लाने को कहा जाए। अनुवाद पाठ योजना। प्रथम, विद्यालय का नाम, अध्यापक का नाम, दिनांक, कालांश पंचम, समय 40 मिनट, विषय संस्कृत अनुवाद, कक्षा दसम, वर्ग क, सामान्य उद्देश्य। प्रथम, छात्रों को संस्कृत के माध्यम से विचारों को आदान प्रदान करने की योग्यता प्रदान करना। द्वितीय, विद्यार्थियों को हिंदी व संस्कृत के वाक्यांशों का तुलनात्मक ज्ञान प्रदान करना। तृतीय, व्याकरण पाठक पाठ में सीखे गए नियमों के प्रयोग के लिए अवसर प्रदान करना। चतुर्थ, संस्कृत भाषा के प्रयोग में छात्र जो त्रुटियां करते हैं उनसे उन्हें परिचित कराते हुए उनको दूर करने की प्रेरणा देना। विशिष्ट उद्देश्य, छात्रों को वर्तमान काल, लट लकार, प्रथम पुरुष की क्रियाओं का प्रयोग करने की क्षमता प्रदान करना तथा श्यामपट पर हिंदी में लिखे हुए वर्तमान कालिक 10 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना सिखाना। सहायक सामग्री, लपेट श्यामपट पर लिखे हुए कुछ वाक्य, पूर्व ज्ञान, छात्र क्रियाओं के लट लकार के रूप सभी पुरुषों में जानते हैं, साथ ही वे अकारांत, अकरांत, इकरांत तथा उकरांत संज्ञा शब्दों के रूपों से भी परिचित हैं। प्रस्तावना, निम्नलिखित वाक्यों को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। प्रथम, लड़के पढ़ते हैं। तृतीय, लड़कियां विद्यालय जाती हैं। तृतीय, मोहन पत्र लिखता है। चतुर्थ, हरी दौड़ता है। पंचम, दो बालक गेंद खेलते हैं। षष्ठ, बालक मोहन के साथ चलता है। सप्तम, सुरेश सूर्य को नमस्कार करता है। अष्टम, दो मनुष्य बाघ को देखते हैं। नवम, दो घोड़े दौड़ते हैं। दसम, बहुत से हाथी यहाँ आते हैं। विषयोपस्थापन। प्रथम, उपर्युक्त 10 वाक्यों का छात्रों द्वारा मौन वाचन। द्वितीय, छात्रों द्वारा कठिन शब्दों पर चिन्ह लगाना। तृतीय, अध्यापक द्वारा स्पष्टीकरण तथा चिन्हित शब्दों के संस्कृत पर्याय बताना। पढ़ना, पठ, जाना, गम, लिखना, लिख, खेलना, क्रीड, चलना, चल, नमस्कार करना, नम, देखना, दृश्य, दौड़ना, धाव, साथ, सह, गेंद, कंदुक, बाघ, उद्यान, घोड़ा, अश्व, हाथी, गज। गम धातु के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, संयोग में तृतीय विभक्ति लगेगी। गेंद यहाँ साधन है, अतः तृतीय विभक्ति होगी। चतुर्थ, उपर्युक्त सभी वाक्यों का संस्कृत में मौखिक रूप से अनुवाद होगा। अध्यापक एक एक वाक्य लेता चलेगा और छात्रों से पूछता चलेगा। अनुवाद लेखन, अध्यापक छात्रों से अनुवाद कार्य लिखने को कहेगा और स्वयं निरीक्षण करेगा। संशोधन, लिखित कार्य का यथासंभव कक्षा में ही संशोधन होगा। गृह कार्य, निम्नलिखित वाक्यों का घर पर संस्कृत में अनुवाद करो। प्रथम, विनोद सोता है। द्वितीय, संतोष यहाँ ठहरता है। तृतीय, श्याम वहाँ बैठता है। चतुर्थ, लड़का क्या खाता है। पंचम, मनुष्य क्या ले जाते हैं। अनुवाद पाठ योजना द्वितीय, विद्यालय का नाम, अध्यापक का नाम, दिनांक, कालांश अष्टम, समय 40 मिनट, विषय संस्कृत अनुवाद, कक्षा 10, वर्ग ख, सामान्य उद्देश्य प्रथम, छात्रों को संस्कृत के माध्यम से विचारों को आदान प्रदान करने की योग्यता प्रदान करना। द्वितीय, विद्यार्थियों को हिंदी व संस्कृत के वाक्यों का तुलनात्मक ज्ञान प्रदान करना। तृतीय, व्याकरण पाठ में सीखे गए नियमों के प्रयोग के लिए अवसर प्रदान करना। चतुर्थ, मातृभाषा में अभिव्यक्त विचारों की रक्षा करते हुए उन विचारों को संस्कृत भाषा में अनुवादित करना। पंचम, संस्कृत भाषा के प्रयोग में छात्र जो त्रुटियां करते हैं उनसे उन्हें परिचित कराते हुए उनको दूर करने की प्रेरणा देना। विशिष्ट उद्देश्य, श्यामपट पर हिंदी में लिखे हुए 10 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना। सहायक सामग्री, लपेट श्यामपट। पूर्व ज्ञान, छात्र कारक पुरुष वचन एवं लिंग के नियमों का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। प्रस्तावना, निम्नलिखित वाक्यों को श्यामपट पर लिख दिया जाएगा अथवा पहले से लपेट श्यामपट पर लिखे हुए वाक्यों को प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रथम, विद्या सब धनों से श्रेष्ठ है। द्वितीय, इसे कोई चुरा नहीं सकता। तृतीय, कोई व्यक्ति इसे छीन भी नहीं सकता। चतुर्थ, भाई बंधु इसका बंटवारा भी नहीं कर सकते। पंचम, यह धन दान या भोग से छीन नहीं होता, वरन और बढ़ता है। षष्ठ, विदेश जाने पर विद्या बंधु के समान सहायता करती है। सप्तम, विद्वान सब जगह पूजा जाता है। अष्टम, राजा अपने राज्य में ही आदर पाता है। नवम, विद्याहीन पुरुष पशु के समान है और वह पृथ्वी पर भार स्वरूप होता है। दसम, कल्पलता के समान विद्या क्या क्या सिद्ध नहीं करती है। विषयोस्थापन, प्रथम, उपर्युक्त 10 वाक्यों का छात्र मौन वाचन करेंगे। द्वितीय, वे कठिन शब्दों पर चिन्ह लगाएंगे। तृतीय, अध्यापक द्वारा चिन्हित शब्दों के संस्कृत पर्याय प्रदान करना। चुरा नहीं सकता, चोरियंतुम न शक्नोति, छीन नहीं सकता, छपहर्तु न शक्नोति, बंटवारा नहीं कर सकते। विभुक्तुम न शक्नुवन्ति, छीण नहीं होता, न छीयते और बढ़ता है, अधिक वर्धते, पृथ्वी पर भार स्वरूप होता है। भुवि भारभूतः अस्ति, क्या क्या सिद्ध नहीं करती। किम किम न साधयति। चतुर्थ, उपर्युक्त सभी वाक्यों का संस्कृत मौखिक रूप से अनुवाद होगा। अध्यापक एक एक वाक्य लेता चलेगा, छात्रों से पूछता चलेगा। अनुवाद लेखन, अध्यापक छात्रों से अनुवाद कार्य लिखने को कहेगा। संशोधन, लिखित कार्य का यथासंभव कक्षा में ही संशोधन होगा। गृह कार्य, निम्नलिखित वाक्यों का घर पर संस्कृत में अनुवाद करो। प्रथम, विद्वान सब पंक्तियों व्यक्तियों में श्रेष्ठ व्यक्ति है। द्वितीय, विद्या क्या क्या नहीं देती। तृतीय, भारत में विद्वान आदर पाता है। चतुर्थ, शासन निर्धन छात्रों की सहायता करता है।